हरे कृष्णा। शायद आप में से अनेक भक्त लोग इस ग्रेस श्याम कृष्ण प्रभु को शायद जानते नहीं होंगे। इस ग्रेस श्याम कृष्ण प्रभु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बहुत वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। पुणे में जब हम लोग 95 में पुणे में आए थे, उस समय सिर्फ 3 वरिष्ठ भक्त वो राधा कुंजीबारी मंदिर को चला रहे थे। श्रीमान श्यामकृष्ण प्रभु, केशव प्रभु और एक सदायुगी प्रभु करके एक भक्त थे कांग्रीगेशन के। तो ये 3 लोग चला देते राधा कुंजीबारी मंदिर को, भगवान की श्रृंगार करना, भागवतम क्लास देना, लाइफ मेंबर बनाना और मेंटेनेंस करना, सब कुछ ये 3 लोग बहुत कसरत करते थे। और संडे फीस प्रोग्राम को भी चला देते। मंदिर में लगभग 100-150 लोग आते थे संडे फीस्ट में, सबके लिए कुकिंग करके प्रसाद परोसना। और श्याम कृष्ण प्रभु लगभग 2-3 हज़ार लाइफ नंबर लोगों के लिस्ट बनाकर, लाइफ नंबरों को मंदिर में जोड़कर उनको जाकर प्रसाद देना, उनको इनविटेशन देना, उत्सव में बुलाना उनको, इत्यादि करते थे। आप जानते हैं पुना के बड़े बड़े लाइफ नंबर जो होते हैं, जैसे मल्होत्रा जी और रमेश ठक्कर, ऐसे लोग इनको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि शुरुआत के दिनों से प्रभु जी को वो लोग जानते हैं और प्रभु जी को भागवत पढ़ने में बड़ा रुचि है। जब पुणे मंदिर में अनेक भक्त लोग आकर जुड़कर मंदिर की डेवलपमेंट हुई, बाद में भी प्रभु जी की इच्छा थी कि हम नियमित रूप से भागवत पढ़े और मंदिर में कुंजीबारी के दर्शन के लिए आए। इसलिए मंदिर के पीछे एक छोटा कमरा लिया प्रभु जी ने। तो रोज प्रभु जी आ जाते थे 8 बजे 9 बजे आकर, उधर ठहरते थे, पढ़ते थे बगीचे में बैठकर और राधा कुंजीबारी के सामने बैठकर जप करते थे ऐसे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इनको बहुत सालों से जानते हैं और महाराज अक्सर इनके बारे में गुणगान करते हैं महाराज जी। तो इनके धर्मपत्नी माता जी और इनके एक बेटा और 2 बेटी, सब लोग गंभीर भक्त हैं, बहुत सालों से भक्ति में जुड़े हैं। और शायद इधर बैठे हुए अनेक भक्त लोग कुंजीबारी मंदिर में इनसे मुलाकात हुआ नहीं होगा आपको, इसलिए मैंने बोला आपको। तो ऐसे वरिष्ठ भक्तों की शुरुआत से और उनके उत्साह से आज हम लोग बहुत अच्छे मंदिर में बैठकर हम लोग भक्ति मार्ग में जुड़कर कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं हम लोग। आइए हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं और आज हम सत्र सुनेंगे प्रभु जी से। हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी हड़सर में रहते हैं ना प्रभु जी?
राधेश्याम प्रभु जी ने हमारा थोड़ा परिचय किया। आप राधेश्याम प्रभु जी को जो नए लोग हैं मैं बताता हूँ। हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी, पुणे में इतना प्रचार नहीं था जब राधेश्याम प्रभु जी जुड़े उस समय, तो पुणे मंदिर चलना भी बहुत मुश्किल था और भक्त नहीं थे कोई भी। जैसे बताया उन्होंने कि 3-4 भक्त रहते थे और गोपाल कृष्ण महाराज जी का इच्छा था कि ये पुणे मंदिर ये अध्यात्म में ऊपर उठे। और ये मंदिर शुरू हुआ था 84 में, तो प्रभु जी जुड़ने से पहले तक महाराज ने प्रयास किया था कि मंदिर को अध्यात्म में भी ऊपर उठाए। कोई भक्त ही नहीं रहते थे, भक्त नहीं, प्रेसिडेंट हर साल बदलते थे। अभी तो भगवान की कृपा से प्रभु जी सालों साल, शायद 98 में प्रेसिडेंट बने थे, 2008-2018-20-25 साल, मतलब उनका जो 100 साल जीवन होते हैं तो 1/4 उन्होंने प्रेसिडेंटशिप में ही है अभी तक वो। लेकिन ये मंदिर इसके पहले का इतिहास ऐसा है कि हर साल प्रेसिडेंट बदलता था, 84, 85, 86, 87, 89, 90 से 94 कृष्णाम प्रभु जी थे 3-4 साल। तो महाराज गोपाल कृष्ण महाराज को बहुत ही ये चिंता थी। देवी नंदन प्रभु तो बोलते थे ये पुणे मंदिर को श्राप है, ये कभी भी ऊपर नहीं आएगा। लेकिन एक वैष्णव की इच्छा थी तो भगवान भक्त भेजते हैं। राधेश्याम प्रभु जी को याद होगा, अभी तो आप लोगों को इतना बड़ा मंदिर है, करोड़ों का मंदिर है ये, इसमें आप मार्बल में बैठे हैं, छत है, बारिश नहीं, आपको धूप नहीं। लेकिन राधे श्याम प्रभु जी जब उस पुना मंदिर में जुड़े थे तो पुराना टूटा हुआ मंदिर था, और इनका जो कमरा था वो मंदिर के सामने जहाँ पे अभी सेवा ऑफिस है गोविंदा के बाजू में, बिल्कुल पुराना सा एक कमरा था, उधर राधे श्याम प्रभु जी बैठते थे। और पहले तो प्रेसिडेंट थे, इनके पहले भी वृंदावन स्वामी जी जो प्रभु जी है वो प्रेसिडेंट थे, कृष्णानंद प्रभु प्रेसिडेंट थे, ये आते थे। और युद्ध नहीं थे पुणे में, तो प्रभु जी साइकिल पे, किसी के साइकिल पे तो नहीं, कोई जाता था तो स्कूटर पे पीछे बैठ के या जैसे भी है, कॉलेज में जाके बच्चों को प्रचार कर करके तो इनका बहुत ही योग। इतना बड़ा मंदिर ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी से बन गया, इसके पीछे आप देखोगे तो राधे श्याम प्रभु जैसे कितने लोगों का हाथ है। श्री गुरुचरण प्रभु ने भी इसमें मेहनत की। और जो पुराना मंदिर है, अभी तो यहाँ तो बहुत कमरे हैं, लेकिन उस ब्रह्मचर्य आश्रम में एक कमरे में 25-30 लड़के शायद रहते थे, और कुछ लोग बहुत उत्साही रहते थे, 3 बजे का अलार्म लगा दिया, कोई 2 बजे का अलार्म लगा दिया। तो बाद में उस कमरे में एक बोर्ड लगाना पड़ा कि इस कमरे में 4 बजे से पहले अलार्म लगाना अपराध है। तो इतने ठूस ठूस के भक्त भरे थे। फिर भगवान की कृपा से और ये जगह मिली। राधे श्याम प्रभु जी को बहुत चिंता थी, बड़ा मंदिर नहीं बनाएंगे। महाराज से बोलते थे, महाराज बड़ा मंदिर बनाएंगे ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे। महाराज बोले नहीं बनाओ। तो फिर बड़ा मंदिर बना और आज है ब्रह्मचारी यहाँ से सप्लाई होते हैं। इतने ब्रह्मचारी हैं कि और अलग अलग मंदिर में हमको भेजते हैं। तो इसका इतिहास बहुत बड़ा है। तो राधे श्याम प्रभु जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का भी देखभाल किया और बहुत हमको अच्छी तरह से उन्होंने रखा, उनके आश्रय में रखा हमको ही नहीं पूरे पुणे के भक्तों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत से गुरुओं के शिष्य हैं। तो सब जो गुरुओं के शिष्य को लेके चलाना ये इतना आसान नहीं है। तो किसी का भी इनके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है। आप पूरे दुनिया में कहीं भी जाएंगे, हर जीबीसी और हर भक्त इनको चाहते हैं। अभी राधे श्याम प्रभु जी को हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहर भी दिए हैं प्रचार के लिए। तो ये प्रभुपाद की और भगवान की कृपा है कि इसका उनको अच्छा बड़ा एक देन मिला है, जो हमारे भविष्य के बहुत बड़े एक नेता है, ये अभी भी है और भविष्य में भी ये रहेंगे। दंडवत प्रणाम राधे श्याम प्रभु जी। बहुत समय से आपका पुनः वहाँ जो कैंप में तो रोज अक्सर दिन भर साथ में रहते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद अपना थोड़ा कम मुलाकात होती है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक नंबर 13। कंडोहपम लोचया लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चाप विद्धाम जगृह भूरुहानुपनंदना। कंडो प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चाप विद्धाम जगृह भूरुहानुपनंदना। कंडो प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चाप विद्धाम जुग्रुहुर भूर्हानपनंदनः। शब्दार्थ कंडोह कंडु मुनि की प्रम्लोचया प्रम्लोचा नाम की अप्सरा से लब्धा प्राप्त किया कन्या पुत्री कमल लोचना कमल जैसे नेत्रों वाली ताम उसको च भी अपविद्धाम छोड़ी हुई जुग्रुह स्वीकार किया भूरहा वृक्ष नृपनंदना हे राजा प्राचीन बरिषित के पुत्रों। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद देखी। हे राजा प्राचीन बरिषित के पुत्रों प्रम्लोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रम्लोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। अनुवाद दोहराइए। हे राजा प्राचीन बरिषित के पुत्रों प्रम्लोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रम्लोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तात्पर्य, जब भी कोई ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है तो स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्यालु हो उठता है। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने जाए श्री शिव राधा वृंदावन चंद्र श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा शिष्य करता है भगवान की। सभी देवताओं पर संसार का कार्य चलाने के लिए उत्तरदायित्व तो है और वे पुण्य कर्मों के कारण अत्यंत योग्य होते हैं। यद्यपि वे सामान्य जीव है किंतु वे ब्रह्मा इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण पदों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जैसे कि इस संसार की रीति है, स्वर्ग का राजा इंद्र किसी भी ऋषि के द्वारा कठोर तपस्या करने पर ईर्ष्या करने लगता है। यह सारा संसार ऐसे ही ईर्ष्या से पूर्ण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से भयभीत रहता है, प्रत्येक व्यापारी अपने संगियों से भयभीत रहता है, क्योंकि यह संसार समस्त प्रकार के ईर्ष्यालु व्यक्तियों का कर्म क्षेत्र है जो यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य से स्पर्धा करने के लिए आए हुए हैं। इस प्रकार इंद्र कंडू द्वारा संपन्न कठोर तपस्या से अत्यंत भयभीत था और उसने उसके व्रत तथा तपस्या को खंडित करने के लिए प्रम्लोचा को भेजा। ऐसी ही घटना विश्वामित्र के साथ भी घटित हुई थी। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र सदा से ईर्ष्यालु रहा है। जब राजा पृथु इंद्र से बढ़कर विभिन्न यज्ञ संपन्न कर रहा था कर तो इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु हो उठा और उसने राजा पृथु के यज्ञ में गड़बड़ी मचाई। इसकी व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है। इंद्र को कंडु ऋषि का व्रत भंग करने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि प्रम्लोचा नामक अप्सरा की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने एक कन्या को जन्म दिया। यहाँ पर इस कन्या को कमलनयनी तथा अत्यंत सुंदरी कहा गया है। अपने उद्देश्य में सफल होकर प्रम्लोचा नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दे दी। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदं वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान् हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो आज माधवाचार्य का भी डिसअपीयरेंस है, उनके बारे में भी दो तीन मिनट हम चर्चा करते हैं कि श्रीपाद माधवाचार्य का जन्म 1128 के आसपास हुआ था। बेंगलोर के पास उड़ुपी है और उड़के के पास में एक गांव है प्राजक क्षेत्र। इनके पिताजी का नाम था मध्यगेह भट्ट और माता थी वेदवती। इनका बचपन का नाम था वैसे वासुदेव, बाद में इनका नाम हुआ माधवाचार्य। तो ये वायुदेव और भीम इनके ये अवतार है माधवाचार्य। और बहुत शक्ति मतलब भीम और वायुदेव मतलब शक्तिशाली। तो जब उनका प्राजक क्षेत्र में अब हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक बड़े बड़े पत्थर है देखते हैं, जिसको अभी हम 10-15 लोग भी उठा के भी नहीं पकड़ के भी नहीं उठा सकते, वैसे रख देते हैं उठा के रख देते थे। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने सब शास्त्र पढ़ लिए थे, 10 साल तक तो पूरे जानकार हो गए थे पूरे वेदों के शास्त्रों के। इस प्रकार से ये उनका जन्म हुआ था। ये हमारा जिनसे ही जुड़ा हुआ है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय जो वैष्णव है माध्वाचार्य के संप्रदाय में ही है। तो इनकी बहुत सी ऐसे इन्होंने इनकी लीला जिसे मालूम पड़ता था कि ये वायुदेव के ये अवतार है। जब एक बार लोगों ने बोला आपने सच में आप वायुदेव के अवतार हैं, हमसे सुनते हैं हम देखते हैं, तो कुछ आप बताइए क्या का आप हम कैसे ये करे हैं। तो एक बार उन्होंने 4000 केले खाए थे और फिर बोले दूध लाओ, और दूध का एक मटका देता पी गए, बोले और एक लाओ और पी गए। तो ऐसे उन्होंने 30 मटके दूध पे और पेट ऐसे ही था नॉर्मल, ऐसा नहीं कि फूक गया था। तो इस प्रकार से श्रीपाद माधवाचार्य ने इस भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। और वो व्यास जी को भी वो मिले थे जाके बद्रीनाथ में वहाँ पे। और इनका जो पिताजी का ऋण था एक पे, एक उनको खेती के लिए बैल लेना था पिताजी को, तो एक किसी से कर्जा लिया था वो बैल खरीदी करने के लिए। कर्जा लौटा नहीं पाए तो वो कर्जदार आके बैठ गया उनके घर के सामने और बोला कि जब तक आप मुझे पैसा नहीं देंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। पिताजी बोले प्रसाद तो ले लीजिए, कुछ भोजन कीजिए। बोला नहीं, मैं न कुछ ना खाऊंगा ना पीऊँगा जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं देंगे। तो पिताजी बोले कि अभी घर में अतिथि है, वो अगर कुछ नहीं खा रहा है तो हम लोग भी नहीं खाएंगे। लेकिन माधवाचार्य जो थे तो भीम क्या उतारते, तो ये भूखे नहीं रह सकते, इनको तो भूख लगी। पिताजी को बोला पिताजी भोजन चाहिए। माताजी को पूछा भोजन, तो बोले आज पिताजी नहीं खा रहे, वो अतिथि है आया है और कर्जदार है, वो नहीं खा रहा है, इसलिए हम लोग भी कोई भी भोजन नहीं करेंगे। उनको तो बोले नहीं नहीं मेरे को तो खाना चाहिए। बोले नहीं वो जब तक वो नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। तो माधवाचार्य गए उनके पास, बोला कि आपका कितना कर्जा है। बोला इतना इतना है। बोले आइए मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ। वो बोला जो कर्जदार था ये बच्चा कहाँ से देगा। तो वहाँ पे इमली का झाड़ है, अभी भी है वहाँ पे बीज थे इमली के, ऐसे सब जमा किए मुट्ठी में। तो वो जो कर्जदार था वो सब जगह बच्चे लोग ऐसे करते हैं कभी, वही लो जाओ कुछ भी करो ऐसे। तो मिट्टी के वो अपने इमली के बीज लेके उनको दिए, तो उसने ले लिया हाथ में। उसने हाथ में लिए और सब सोने में परिवर्तन हो गए थे सब बीज। उसने देखा बाप रे सब सोना बन गए और इस बच्चे ने दिए हैं ये। बोला ये लो और तुम्हारा कर्जा ले लो ये। फिर वो चला गया वहाँ से, वो उसको प्रणाम करके। एक बार इनको गंगा पार करना था, तो वो मुसलमान लोगों का एरिया था, तो वो पार करने नहीं देते थे हिंदू लोगों को। तो माधवाचार्य बोला मुझे जाने, बोले नहीं नहीं तुम नहीं आने का, तुमको हम नहीं लेके जाएंगे नाव में, हम पार नहीं करेंगे। तो माधवाचार्य ने ठीक है बोला, नहीं देंगे। तो गंगा के उन्होंने ऊपर ऐसे चल के, हम रोड पे जाते हैं चल के, वैसे गंगा पे चल के रोड पार कर गए वो। तो इस प्रकार से इसके बाद माधवाचार्य की बहुत, और ये ब्रज लीला में माधवी गोपी थे और एक इनका ये है कि एक बार ये जब समुद्र में वहाँ पे थे स्नान वगैरह किया, तो एक जहाज डूब रहा था और बहुत तूफान आ गया था। तो जहाज के जो व्यापारी था बोला अभी तो मर जाना, अभी तो कुछ बचेंगे नहीं अभी। फिर देखा कि व्यापारी ने कोई बचा सकता है क्या, तो माधवाचार्य में बहुत दूर खड़े थे किनारे पे, वो भी देख रहे थे कि जहाज हवा से बहुत ऐसे हिल रहा है डूब रहा है। तो ये तो वायुदेव के अवतार थे, उन्होंने अपना वो निकाला उतरी और वायु को बोला अभी थोड़ा जो चले जाओ आप शांत हो जाओ। तो बिल्कुल वायु रुक गया और वो जहाज आया किनारे पे। तो वो जो व्यापारी था बहुत उनसे प्रसन्न हुआ और बोला आपको मैं क्या सेवा, आपने मेरी जान बचाई, हम सब डूब जाते थे जहाज में, हमारे सब जो धन है ये भी डूब जाता था, तो क्या सेवा करें। तो उन्होंने देखा कि उस जहाज में क्या है उनको लेने जैसे, गोपी चंदन दिखा बहुत सा बड़ा ऐसा पत्थर। तो बोले ये दे दो। तो बोला ये तो चंदन है। बोला हाँ यही चाहिए। जब उन्होंने ले लिया तो उसके अंदर था वो श्री भगवान का विग्रह जो द्वारका में से आ रहा था, और उस विग्रह को फिर उन्होंने लाके उड़पी में स्थापना किया। इनके वो जो सन्यासी शिष्य थे उनके भी अलग अलग से साइड में आश्रम है, और इनके जो गुरु थे अच्युत प्रेक्ष, इनसे उन्होंने फिर संन्यास लिया। माताजी को पिताजी को बोला कि मैं अभी संन्यास लूँगा, और उम्र थी 12 साल 11 10 11 12, ऐसे छोटी सी उम्र थी। माता पिता बोले यार तुम तो एक ही बेटे हो, तो हमारे संप्रदाय में ऐसे बहुत से भक्त हैं जो माता पिता के एक ही बेटे हैं, तो कोई भी माता पिता का इच्छा नहीं कि बेटा घर छोड़ के जाए, वो बोलते आप घर में ही भक्ति करो। लेकिन माधवाचार्य बोले नहीं मैं, मुझे आप संन्यास दीजिए। बोले ना आप बहुत छोटे हैं, आप एक ही हैं, हम कैसे करेंगे। तो माधवाचारी बोले आपको और एक बेटा हो जाएगा। बोलेंगे कैसे क्या? बोलो नहीं हो जाएगा, आप मैं बोल रहा हूं ना। तो उनको विश्वास नहीं था, तो उन्होंने वहां पे एक सूखा हुआ लकड़ी था, तो माधवाचार्य ने माता पिता को बोला ये लकड़ी कल पूरा हरा हरा झाड़ बन जाएगा। तो दूसरे दिन वो सच में वो लकड़ी सूखी हुई लकड़ी हरी झाड़ बन गई। फिर भी माता जी को उनको विश्वास नहीं हुआ। तो वहां एक सूखा हुआ तालाब था, तो माधवाचार्य ने बोला माता जी को कि मेरे बात पर विश्वास रखिए, ये जो तालाब है ये सूखा हुआ है, आप देखना कल पूरा पानी से भर जाएगा। और दूसरे दिन वो पूरा पानी से भर गया। फिर माता पिता ने उनको अनुमति दी, फिर उन्होंने 12 साल की उम्र में ही संन्यास लिया, इतनी छोटी उम्र में। तो हमारी ये परंपरा है कि छोटी उम्र में ही भक्ति करें, से प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा है कि छोटी उम्र से ही भक्ति करना चाहिए। तो जैसे हमें राधेश्याम प्रभु जी भी छोटी उम्र से ही लोगों को पकड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो झाड़ है, जो जो वो क्या बोलते हैं, जो बेल होती ना, बेल बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, हाँ लता, लता को किधर भी मोड़ेंगे तो उधर से जाएगी वो, और ठूस बन जाएगा ना लकड़ी का बड़ा, उसको नहीं मोड़ना बहुत मुश्किल है, मुड़ता ही नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ता नहीं है। इसलिए बचपन से ही ये भक्ति। तो मध्वाचार्य 80 साल तक इस संसार में थे, फिर वो प्रकट हुए, शिल्पाद मध्वाचार्य की। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि कंडो, कंडो एक ऋषि थे कंडू, और वो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने ये देखा कि ये व्यक्ति मेरे लिए खतरा है, तो युद्ध वगैरह तो नहीं किया, बोला अभी इसको खतरे को कैसे हटाना चाहिए। तो ये भक्ति मार्ग में कितना भी कोई आगे जाता है, दो खतरे हमेशा रहते हैं, एक स्त्री, दूसरा पैसा। प्रभुपाद बोलते बड़े बड़े भक्ति मार्ग के दिग्गज इसके शिकार बन जाते हैं। तो सैफरन क्यों देते हैं? सैफरन देते हैं लाल लाल कपड़ा, जैसे अभी इतने सफेद में मार्केट में इतने सारे कपड़े, तो एक सैफरन तुरंत दिख के आ जाता है। तो वो जब देखता है दिन भर तो सावधान। अभी हम देखते हैं रोड पे जा रहे हैं तो लाल लाइट दिखते हैं रुक जाते हैं, उसको लापरवाह नहीं करते हैं, लापरवाह किए हरदम एक्सीडेंट। तो ये भक्ति मार्ग में बहुत सावधानी है होना चाहिए। तो इंद्र ने देखा कि इसको कैसे हराएं, इसको अभी कैसे विचलित करें। तो फिर उन्होंने एक अप्सरा भेजी, प्रम्लोचा। ये जो प्रम्लोचा अप्सरा थी आई, और इंद्र का जो प्लान सक्सेस हुआ, ऋषि उस अप्सरा की तरफ आकर्षित हो गए। जैसे ही हम ज्यादा स्त्री की तरफ आकर्षित हुए तो हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो स्त्रियां ये नहीं कि वो बुरा है, वो भक्ति मार्ग में अगर जुड़े हैं तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंद्र था वो समझ गया कि अभी ऋषि से हमारा खतरा नहीं आ गया है। फिर इनके सहयोग से एक लड़की हुई जिसको पता है कमल लोचना, उसके अच्छे कमल के जैसे उसकी आंखें थी। और ये अप्सराएं होती है ये बच्चों को जन्म दे के छोड़ देती हैं, फिर चले जाती हैं। तो उसने छोड़ दिया अप्सरा ने, फिर वो वृक्षों की देखरेख में फिर रही, और चंद्रदेव ने उनको बाद में उसको संभाला और अमृत पिलाया, जिंदा रखा। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में तीन बताए हैं उदाहरण। एक तो ये प्रमलोचा, प्रभुपाद बोलते ऐसी एक घटना घटी थी विश्वामित्र के साथ, जो तपस्या में थे तो वहां भी मेनका आई और वो शकुंतला हुई थी उनसे। और जब पृथु महाराज का भी प्रभुपाद ने इसमें लिखा है कि वो भी जब यज्ञ कर रहे थे तभी भी इंद्र, प्रभुपाद बोलते कि इंद्र ये सदा से ईर्ष्यालु है ये। तो ये जो ईर्ष्या है ये प्रभुपाद बोलते पूरे समाज में भरी है। व्यापारियों में ईर्ष्या होती है, हर जगह पूरा संसार ईर्ष्यालु लोगों से भरा हुआ है, ऐसे ईर्ष्या करते हैं लोग। तो खास करके जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो तो बहुत ईर्ष्यालु होते ही होते हैं, और ये लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते। सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूरतर खल सर्प शाम्यति मंत्रेण दुर्जनो नैव शाम्यति। तो ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ये हमेशा ही संसार में भरे हुए रहते हैं और रहते हैं, तब से है, अनादिकाल से ईर्ष्यालु लोग हैं। शिशुपाल था वो भी भगवान से ऐसे ईर्ष्या करता था, खुद उसको तकलीफ भगवान नहीं देते थे फिर भी वो हमेशा बुराई करता, ये कृष्ण चोर है, ये ऐसे है, बदमाश है, मामा को मार डाला, हमेशा बुराई करता था। फिर जो पौंडरक था वो भी ईर्ष्या करता था, उसको उसके दोस्त बोलते थे तुम असली वसुदेव हो, वो कृष्ण तो नकली वसुदेव है, वो सब तुम्हारे हथियार लिए हैं उसने। तो ये बोला ऐसा है क्या, बोले हाँ, और असली में वो नकली लगा के बैठता था, असली हथियार तो भगवान के पास थे। बोले अरे तुम जाके तुम्हारे वो असली हथियार ले लो ना, तुम क्या नकली लेके बैठे हो सब। एक दूत को बुलाओ, दूत को बुलाया, बोले जाओ जाके बोलो कृष्ण को कि सब मेरे मेरे हथियार दे दे सब, मैं कितने दिन तक नकली लेके बैठूंगा। दूत गया द्वारका में, लोग बोले क्या भाई क्या संदेश है, किसका संदेश है, बोले पौंडरक संदेश दे भेजा है, क्या लेटर दिया है, बोले पढ़ो, पढ़ा, हे कृष्ण तुम झूठे मेरा नाम लिए हो वसुदेव वासुदेव का, और तुम्हारे पास जो हथियार है ये सब मेरे असली हैं, तो तुम मुझे लौटा दो नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा, युद्ध के लिए आ जाओ। तो भगवान बोले उसको ठीक है हम युद्ध करेंगे उस समय देंगे, अभी नहीं देंगे, बुलाओ उसको युद्ध के लिए। तो इस प्रकार से उसका अंत हो गया। तो ये जो ईर्ष्या है हम देखते हैं छठे स्कंद में कि दिति है वो भी चाहती थी कि इंद्र मर जाए, क्योंकि इंद्र ने दिति के बेटों को मारा था, इंद्र के वजह से कारण बना था। तो उन्होंने कश्यप ऋषि को बोला कि कश्यप ऋषि को पहले प्रसन्न किया, कुछ काम लेना है पति से तो पत्नी उसको पहले खुश करती है, जब अगर पति है उसको देखना चाहिए, अगर पत्नी बहुत ज्यादा खुशामद कर रही है कुछ तो भी खतरा है। तो कश्यप ऋषि को खुशामद बोले बोला क्या चाहिए तुमको, वो ऐसा एक बेटा दे दो को इंद्र को मारे। कश्यप बोले वो तो देवता है, तो इसको बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं कर सकता तो गुस्सा हो जाएगी, परिवार चलाने के लिए स्त्री को गुस्सा हमेशा करके परिवार नहीं चल सकता है, वो कुछ भी बोलती है तो उसको एडजस्ट करके समझा के चलाना पड़ता है। बोला हाँ हाँ दे देंगे लड़के दे देंगे, ऐसा ही लड़का होगा तुमको, लेकिन बोला तुमको एक कंडीशन है। दीदी बोली कुछ भी हो जाओ मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले एक व्रत करना पड़ेगा। तो बोली करूँगी, कितने दिन, बोले 365 दिन करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, बोले और एक कंडीशन है, अगर तुम उसमें त्रुटि करोगी तो वो जो लड़का इंद्र का दोस्त मित्र बन जाएगा। तो बोले नहीं नहीं मैं त्रुटि नहीं करूँगी, और ये सब इंद्र को सब पता चल गया कि मेरे लिए और एक खतरा भी आ गया है। तो इंद्र बनता मतलब वो हमेशा वो देखते रहता है किधर से खतरा है, और भक्त को लिए कुछ खतरा नहीं है, भक्त हमेशा निष्काम रहते हैं, उसको कामना है नहीं, कृष्ण भक्त निष्काम आते हो शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, ये हमेशा अशांत रहते हैं, इसको भोग चाहिए सिद्धि चाहिए। धन वाला जो लालची व्यक्ति को कितना भी पैसा दो ऐसा काम करेगा जैसे कि एक भुक्कड़ है एकदम, कोई है ही नहीं उसके पास, इतना रात दिन मेहनत, कुछ खाएगा नहीं कुछ नहीं, इधर भाग ये प्लेन पकड़ वो मीटिंग करो, ऐसे ही भागते भागते मर जाता है एक दिन ऐसे ही। एक बार एक अलेक्जेंडर आया था भारत में, एक साधु बैठा था, बोले क्या है भारत के लोग बेकार, कुछ काम धंधे करते नहीं, ऐसे बैठ के रहते हैं। वो साधु को बोला क्या तुम आलसी लोग कुछ करते नहीं हो, वो साधु ने बोला तुम क्या करते हो, बोला मैं बड़ा योद्धा हूँ, कितने देश जीते हैं, कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने खजाने हैं, कितना साम्राज्य है, कितने मेरे लोग हैं मेरे पास। वो साधु बोला फिर अभी तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, बोला ऐसे ही जीतते जाऊंगा, और उसके आगे का क्या प्लान है, बोला और ऐसे ही जीतते जाऊंगा, उसके आगे फिर क्या, बहुत शादियां करूंगा, फिर क्या है, फिर क्या प्लान है, पर फिर जब इतना साम्राज्य होएगा जब इतना शादियां कर सब करूंगा फिर क्या प्लान, बोला कुछ नहीं फिर मैं सिर्फ बैठ करूंगा सिर्फ। वो साधु वाला वो काम तो मैं भी कर रहा हूँ, इतना सब करने के बाद तुम बैठ के रहोगे, वो काम तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ये जो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, बाकी सब अशांत, तो ये इंद्र भी उसमें आता है, हमेशा देखते रहते हैं कौन तपस्या कर रहा है बस, कि मेरा पोस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर उसने दीदी को तो मार नहीं सकता था, तो दूसरा प्लान किया, छोटा बच्चा बन के सेवा करके, जब दीदी ने त्रुटि की तो पेट में घुस गया, वहां पे देखा बच्चा है पेट के अंदर में, तो बोला यही मेरे को मारने वाला है क्या, उसको मारा तो वो सात बन गए। इंद्र बोला कि एक को मारते थे तो सात बन गए, फिर एक को पकड़ के मारा तो ऐसे सबको मतलब साथ साथ बढ़ रहे थे। फिर वो बोले आप हमें क्यों मार रहे हो, उसने त्रुटि की, हम आपके मित्र ही है ना, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। फिर बोला ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतने सारे उदाहरण भरे हैं, जैसे हम देखते हैं कि वो चित्रकेतु की कथा, बहुत सी रानियां थी, लेकिन एक रानी को जब हुआ संतान हुई तो बाकी रानियां ईर्ष्यालु हो उठी और उसने उस संतान को जहर दे दिया और इस प्रकार से वो लड़का मर गया। ईर्ष्या, शिवजी का भी हम देखते, शिवजी का और उनके ससुर जी का दक्ष जी का, वो भी शिवजी से ईर्ष्या करते थे और सभा में उन्होंने उसे बहुत अपमान किया था शिवजी का, कि ये जो शिव है ये नाम मात्र का शिव है, ये कोई देवता नहीं है और ये यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे बहुत उसने उनका अपमान किया था। तो जो ईर्ष्या है ये प्रभात बोले कि इस संसार में हमेशा केवल कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। और कृष्ण भक्त की क्या इच्छा है कि जैसे मैं शांत हूं वैसे दूसरे भी शांत रहे। अगर सब भक्त बन जाएंगे, ऐसा अगर एक गांव बनता है या एक देश बनता है, विश्व बनता है कि किसी में ईर्ष्या नहीं है तो लड़े झगड़ा का सवाल ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा कब होते हैं, जब स्वार्थ होता है, तो स्वार्थ हमारा एक ही है भगवान की प्रसन्नता। से कोई पुजारी है, वो कोई जो भक्त है वो बुक्शिपिन करने बैठा है स्टॉल पे, वो पुजारी को देख रहा है, वो खुश है, ये पुजारी पुजारी कर रहे हैं, वो पुजारी बुक स्टॉल में कोई बैठा है वो देख रहा है, वो स्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का इच्छा है भगवान की खुशी। तो ऐसा अगर सबकी इच्छा हो जाती है तो ईर्ष्या द्वेष रहता ही नहीं, लेकिन अपना अगर जब स्वार्थ आता है तब ईर्ष्या शुरू होती है। जहां भी स्वार्थ आएगा तहां ईर्ष्या शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमको सुख से शांति से रहना है तो एक ही कृष्ण भक्त। तो हम ये सब कहानियां इसमें बताई गई है कि जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे निष्काम भाव से, तो तब तक हम सुख शांति से नहीं रह सकते हैं। जो कृष्ण भक्त है वो चाहते हैं कि और भी ऐसे ही रहें, से भक्त लोग हैं जाके और दूसरों को भक्त बनाते, क्योंकि चाहते हैं कि ये सुख से रहे। भक्त कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है, वो हमेशा सबको सुखी देखना चाहता है, पर दुख का दुखी। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरे को कुछ दुख नहीं है, मैं देखता हूं ये मूर्ख लोगों को जो भक्ति नहीं कर रहे इनका कितना बुरा हाल होगा, इसलिए मेरा दुख है, आप इनको छुड़ा दीजिए इस दुख से। तो भक्त होते हैं पर दुख का दुखी, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु जी का जो आदेश है उसका पालन करते जा रहे। देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गृहय तारे देश। तो भक्त प्रचार इसीलिए करते हैं दूसरों का जीवन सुखी बनाने के लिए, पर दुख का दुखी। तो ईर्ष्या इस तात्पर्य में आधा आया है। तो हम जब भगवान की सेवा में निष्काम भाव से रहेंगे तब ईर्ष्या रहेगी नहीं, तब हम सबको सम्मान करेंगे और दुख हमको भी नहीं है और किसी को भी नहीं है। तो 9 बज गए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की।